मेहनत से निकलना है। हर माह सिर्फ ओके लिखना और कुछ नहीं लिखना। ओके से समझ जाएंगे कि मेहनत से निकल गए। लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना, नहीं तो कहते हैं कि पत्र तो लिखा, जवाब नहीं मिला। ऐसे नहीं कि आपके पत्र पहुंचते नहीं, पत्र लिखना शुरू करते हो और वहां कंप्यूटर में पहले आ जाता है, पोस्ट में पीछे पहुंचता है। वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज की मुरली में सबको जवाब देता है, रोज पत्र लिखते हैं। इतना लंबा पत्र कोई लिखता है तो इतने अपने सामान को देखो, परमात्मा का कितना प्यार है आप सबसे। परमात्मा का प्यार है तब पत्र लिखते हैं, अर्थात मुरली में उत्तर भी देते हैं और याद प्यार भी देते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है या कोई भी सवाल सामने आता है तो मुरली से रिस्पॉन्स मिलता है, तो फिर कभी शिकायत नहीं करना कि उत्तर नहीं आया। बाकी अच्छा करते हो, जो दिल में बात आती है वो बाप के आगे रखना, अर्थात दिल से निकाल दिया, वो भले करो लेकिन शॉर्ट लिखो। पत्र जब लिखते हो तो उसी समय दिल तो हल्का हो जाता है क्योंकि दे दिया ना। फिर दूसरे दिन की मुरली उस विधि से देखो कि जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर क्या है, रिस्पॉन्स मिलता तो है ना। बेहद का बाप है तो पत्र भी बेहद का लिखना लिखेगा, छोटा थोड़ा ही लिखेगा। तो बाबा कहते मेहनत से निकलना है, मेहनत में फंसे हुए हैं। हर मास सिर्फ ओके लिखना और कुछ नहीं लिखना।
ओके मैंने
बाप समान। ओके, ओ मतलब जीरो, के ओ मतलब बिंदु, के मतलब किंगडम अर्थात राजाई। एक बाप की याद है और राजाई की याद है, बाप की याद है और वर्षे की याद है, अल्फ की याद है और बे की याद है। तो ये है ओके। ओके से समझ जाएंगे कि मेहनत से निकल गए। लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना, नहीं तो कहते हैं पत्र तो लिखा, जवाब नहीं मिला। पत्र लिखा पर जवाब नहीं मिला। ऐसे नहीं है कि आपके पत्र पहुंचते नहीं, पत्र लिखना शुरू करते हो और वहां
पहुंच जाता है,
पहले आ जाता है। पोस्ट में पीछे पहुंचते हैं। वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज की मुरली में सबको जवाब देते हैं, रोज पत्र लिखते हैं। इतना लंबा पत्र कोई लिखता है तो बाप दादा लंबे पत्रों का और रोज की मुरली में जवाब देता है। जवाब मिलता है क्या? इतना आसान है मिलना कि बस बाबा ने कहा जवाब मिलता है और सुन रखा है सबसे कि सारे प्रश्न का उत्तर मुरली में है। अगर नहीं मिला तो क्या करो? किसने सबने कहा है मिलता है पर हमको तो नहीं मिला अभी। बाबा ने कहा है सभी प्रश्नों के जवाब मैं देता हूँ मुरली के द्वारा। तुमने जो भी पत्र लिखे उन सबके पत्रों सब पत्रों के जवाब मैं मुरली में देता हूँ। हमने सबसे पहली स्टेप है मुरली सुनी, मुरली सुनी पर जवाब तो मिला ही नहीं। नेक्स्ट अभी क्या करोगे? अभी पढ़ो, पहला सुना, सुनने से नहीं मिला, नेक्स्ट स्टेप पढ़ो। मुरली पढ़ी फिर भी जवाब नहीं मिला, आगे बोलो आप। नहीं आज की मुरली का कुछ बोलो, कल की नहीं। क्या करो, चक्की चलाओ। सबसे पहले जो सुना तो मिला ही नहीं जवाब, बड़ा ध्यान से सुना फिर भी नहीं मिला, फिर पढ़ा और फिर बहुत ध्यान से पढ़ा फिर भी नहीं मिला।
क्योंकि प्रॉब्लम दिखे नहीं है, लिंक
नहीं है। आगे क्या करें, स्टेप्स नहीं, मुरली सिर्फ चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हारे मन में, तुम्हारे जहन में जो प्रश्न है उसके जवाब मैं मुरली से देता हूँ। उसने कहा मैं देता हूँ, पर हम कह रहे हमें नहीं मिला, तो शायद पढ़ने का तरीका ठीक नहीं था। ठीक है, तो चलो ठीक से पढ़ा दूसरी बार, फिर भी नहीं मिला। आत्मा समझ परमात्मा की बातें दूर, पहले मुरली का जवाब उत्तर चाहिए, उत्तर नहीं मिल रहा है। हमारा क्वेश्चन उसे समझ में नहीं आया, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, बलवानों का बल, तपस्वियों का तप मैं हूँ। मुरली समझ में नहीं आ रहा, तो ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने, 7 दिन का कोर्स करो, फिर से अपने ही मन को, हे मन सुन, तू शायद भूल गया है, तू कौन है, कहाँ से आया है, किसकी संतान है, तुम ईश्वरीय औलाद हो, ईश्वरीय सांप्रदाय हो, कल था ना। नहीं प्यार तो बहुत है, अभी सुना नहीं मिला, अच्छे से सुना उत्तर नहीं मिला, पढ़ा नहीं मिला, अच्छे से पढ़ी नहीं मिली, अभी नहीं। उसी मुरली का बताओ, उसी मुरली में है खजाना, वहीं छुपा है उसी जमीन में। चर्चा, थर्ड स्टेप, चर्चा करो उसकी, उस मुरली का चिंतन, उस मुरली की चर्चा करो, चर्चा की विस्तार सविस्तार चर्चा की, नहीं मिला। फोर्थ स्टेप, फेद तो बहुत है, ऐसा कोई है जो कहे हमें हम निश्चय बुद्धि नहीं है? वो तो कहते हम अपनी छाती फाड़ कर दिखा सकते हैं, वहां पर बाप विराजमान है। चर्चा की, नहीं मिला। अभी चर्चा के बाद है जो चर्चा की उसका चिंतन, उसका चिंतन और मनन, मनन मनन में मन है तो उसका मनन करना, उसको याद करना, जो चिंतन जो चर्चा की उसको चिंतन करना, उसका चिंतन करना, या फिर चर्चा करने से पहले भी चिंतन करना, सुनना पढ़ना चिंतन चर्चा फिर चिंतन। चिंतन किया फिर भी नहीं मिला, अब बोलो। वो कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, एक बाप है, बहुत बड़ी जमीन है, 4 बेटे हैं, चारों ही कुछ काम के नहीं, निकम्मे निठल्ले, कुछ नहीं करते, खाली सोते, पर बाप से प्यार बहुत है चारों को। बाप जब मरने को होता है, मरणासन्न होता है, तो चारों बेटों को बुलाता है, क्या कहता है,
जमीन के अंदर
हमारी जो खेत जमीन है उसमें बहुत सा खजाना छिपा हुआ है, पर ये नहीं बताता कहाँ छिपा है, उतना बोलते बोलते दम तोड़ देता है। कई दिनों तक चारों बेटे दुख करते हैं, मातम मनाते हैं। एक दिन फिर अचानक याद आता है कि बाप ने मरते मरते क्या कहा था, कि जमीन में खजाना गड़ा हुआ है, चलो ढूंढते हैं, अगर खजाना मिल जाए तो सारी जिंदगी अच्छे से गुजर जाए, काम करने की जरूरत नहीं, उन्हें काम तो करना ही नहीं था पहले से। तो बाप ने कह दिया खजाना तो है, तो चालू हो गए जमीन को खोदने, यहाँ खोदा वहां खोदा वहां खोदा वहां खोदा, सारी जमीन खोद डाली, पर कहीं खजाने का कोई पता नहीं। सोच रहे थे ये बाप ने क्या कर दिया जाते जाते, फिर किसी ने देखा कि जमीन तो खोद दी और अभी बारिश आने वाली है, तो क्यों ना तुम बीज डाल दो, इसमें बीज बो दो, देखो क्या होता है। तो उन्होंने लगा ठीक है अभी बीज तो बो देते हैं, तो बीज बो दिया और फिर अच्छी बारिश हुई उस वर्ष तो, और फिर फसलें उगी और इतना धन धान्य मिल गया उनको कि उनके लिए भी और उसको बेचा तो कितना सारा माल मिल गया। तब उनकी समझ में आया कौन सा खजाने की बात कर रहे थे। यहाँ केवल उत्तर नहीं, यहाँ उत्तर के साथ कुछ खजाने भी है। जमीन तो है, अभी जमीन को देखने से तो कुछ मिलने वाला नहीं है, केवल जमीन को देखा और जमीन को सुना, उस जमीन को खोदना पड़ेगा। खोदो, कौन सा हल चलाओगे इस जमीन पर? चिंतन का हल चलाओ और उसमें बीज डालो दृढ़ संकल्प के, तो फसलें उगेगी फिर स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। वो भूमि है ये मुरली, वो खजाना उसमें है, परंतु कुछ करना पड़ेगा तो ही वो खजाना मिलेगा। उसमें छिपा है वो गीत, वो संगीत, वो सुगंध। उस गीत को सुनना है जो उसमें है, उस संगीत को सुनना है जो उसमें है, वो सुगंध उसमें समाई हुई है पर हम तक नहीं पहुंच रही है। तो सुनना, पढ़ना, फिर पढ़ना, सुनाना, चिंतन, चर्चा करना, चिंतन करना, मनन करना। एक है बाबा का कमरा, एक है तुम्हारा कमरा। तुम अपने कमरे पर चिंतन करते हो और बाबा के कमरे में योग करते हो, इसको उल्टा कर दो। बाप के कमरे में पढ़ाई करो और अपने कमरे में चिंतन करो, अपने कमरे में योग करो। बाबा के कमरे में किस लिए जाते लोग? योग करने। बाबा के कमरे में पढ़ाई करो और अपने कमरे में योग करो, इधर से उधर कर दो। अब बाबा के कमरे में पढ़ाई अर्थात क्या? जो ज्ञान सुना है, समझा है, उसको याद करने का प्रयत्न करना, वहां बैठकर उस एकाग्रता की अवस्था में, उस अशरीरीपन की अवस्था में, तो प्रश्न का उत्तर मिलेगा। वैसे नहीं, पढ़ना नहीं है, याद करना है, उस ज्ञान बिंदुओं को याद करना है, पढ़ाई करना है। वहां पर जो कमरे में करते हो, और जो बाबा का कमरा और तुम्हारा कमरा, अपने कमरे में योग और बाप के कमरे में पढ़ाई। अपने कमरे वाला काम बाप के कमरे में, और बाप के कमरे वाला काम अपने कमरे में। तो ये करना है। उत्तर और कैसे मिलेगा? उत्तर मिलेगा अशरीरीपन की अवस्था में, उत्तर मिलेगा सूक्ष्म वतन में, उत्तर छिपा हुआ है, उत्तर ऊपर है, स्वच्छ बुद्धि में, परम धाम में उत्तर छिपा हुआ है। उत्तर छिपा है आत्मा की याद की यात्रा में, उत्तर छिपा हुआ है स्वदर्शन चक्र घुमाने में, उत्तर छिपा है पांचों स्वरूपों की यात्रा में। स्वरूप की यात्रा में निकल जाओ तो यात्रा जब पूरी करके आओगे तो उत्तर साथ में होगा। चेतना की परतों में उत्तर छिपा हुआ है, उसकी गहराई में उतरोगे तो उत्तर मिलेगा। उत्तर मिलेगा बाप से रूरियान करने में, उत्तर मिलेगा स्वयं से रूरियान करने से, उत्तर मिलेगा ज्ञान के चिंतन से। ये सब कुछ में उत्तर समाया हुआ है। केवल वो मुरली सुनी और उसमें उत्तर ना आया तो ये नहीं समझना कि बाबा ने नहीं दिया। पत्र लिखना शुरू करते हो और वहां कंप्यूटर में पहले आ जाता है, पोस्ट से पीछे पहुंचता है। वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज की मुरली में सबको जवाब देते हैं। अगर जवाब नहीं दिया तो, मिला तो क्या क्या करना, ये सब करना। फिर अगर जवाब नहीं मिलता है तो रोज पत्र लिखते हैं, रोज पत्र लिखते हैं। अब इतना लंबा पत्र कोई लिखता है तो इतने अपने स्वमान को देखो, परमात्मा का कितना प्यार है आप सबसे। परमात्मा का प्यार है तब पत्र लिखता है, अर्थात मुरली में उत्तर भी देते हैं और याद प्यार भी देते हैं। तुम थोड़ा ही लिखो केवल, और मैं अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है या कोई भी समस्या सामने आती है तो मुरली से रिस्पॉन्ड मिलता है। तो फिर कभी शिकायत नहीं करना कि उत्तर नहीं आया, उत्तर है, उन्हीं शब्दों में है। उन शब्दों को ना पकड़ो, उन शब्दों के पीछे का शब्दातीत भाव क्या है उसमें उत्तर समाया हुआ है। बाकी अच्छा करते हो। जो दिल में बात आती है वो बाप के आगे रखना, अर्थात दिल से निकाल दिया, वो भले करो लेकिन शॉर्ट लिखो। पत्र जब लिखते हो तो उसी समय दिल तो हल्का हो जाता है क्योंकि दे दिया ना। फिर दूसरे दिन की मुरली उस विधि से देखो। किस विधि से? जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर क्या है। खजाना वही है, ढूंढना है बस कहाँ है उत्तर। हर प्रश्न का उत्तर उसी दिन की मुरली में, जिस दिन प्रश्न उठा मन में उसमें है। परंतु पहले सुना, फिर ध्यान से सुना, फिर पढ़ा, फिर ध्यान से पढ़ा, फिर चिंतन किया, फिर चर्चा की या किसी से पूछा या फिर मनन किया, और फिर अशरीरी अवस्था में उस मुरली का चिंतन किया, मनन किया, अध्ययन किया, याद की, यात्रा की, निकल पड़े याद की यात्रा में एक लक्ष्य के साथ। तो जब लौटोगे तो उत्तर साथ लेकर लौटोगे। अगर नहीं मिल रहा है फिर भी, तो फिर हमारी कुछ विधि में गलती है। बार 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 विधि को चेक करना। दूसरे दिन की मुरली उस विधि से देखो, जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर क्या है। रेस्पॉन्स मिलता तो है ना। बेहद का बाप है तो पत्र भी बेहद का लिखेगा। वो छोटे पत्र नहीं लिखता है, वो छोटा थोड़े ही लिखेगा। बाबा छोटा थोड़े ही लिखेगा। अगम निगम के राजों को बताता है पत्रों में, अनंत की अनंतता को बताता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत की बातें सुनाता है, इतिहास की बातें सुनाता है और भूगोल की बातें सुनाता है और भविष्य की भविष्यवाणियां करता है। ऐसा अद्भुत अनोखा और अनूठा पत्र है उसका, जिसमें सृष्टि के राज समाये हुए हैं, सृष्टि के रहस्य का रहस्य उद्घाटन उसमें होता है। ऐसा अद्भुत ये पत्र है उसका। बहुत पहले अमेरिका का जो 16वां प्रेसिडेंट था, कौन, अप्रमानस अब्राहम लिंकन, उसने एक पत्र लिखा था। वो इतना प्रसिद्ध पत्र है कि किसी भी ग्रंथालय में चले जाओ, किसी भी स्कूल में चले जाओ, बड़े अक्षरों में सब जगह लिखा रहता है। वो किसको लिखा था उसने? अपना, उसका जो बेटा था, उसके प्रधान अध्यापक, उसका जो बेटे का जो स्कूल का जो हेडमास्टर था, उसको वो पत्र लिखा था। वो इतना सार गर्भित पत्र है, इतना महत्वपूर्ण पत्र है। उसमें वो लिख रहा है कि मेरा ये जो बेटा है उसके साथ तुम क्या करो, ये उसका पहला दिन है। मेरे पास था वो पत्र कहीं। वो पत्र इतना महत्वपूर्ण पत्र है कि जो भी एजुकेशन की जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती है उस पत्र पर उसके ऊपर चर्चा होती है। बहुत सुंदर पत्र है वो। तो वो पत्र किसने लिखा? और ये बाबा रोज पत्र लिखता है। वो पत्र का इतना सम्मान होता है, यहाँ पे लिखा है वो, सम्माननीय सर, आज मेरे बेटे का स्कूल में पहला दिन है। वह पूरी दुनिया से अभी अनजान है। मैं चाहता हूं कि आप उसे जिंदगी के गुर सिखलाएं। इस दुनिया में सारे लोग अच्छे और अच्छे नहीं है, सच्चे और अच्छे नहीं है, यह बात उसे सीखनी होगी। मैं चाहता हूं कि आप उसे यह सिखाएं कि दुनिया में बुरे से बुरे इंसान के पास भी एक अच्छा और पवित्र हृदय होता है। हर दुश्मन के अंदर एक बेहतरीन दोस्त बनने की अनंत संभावनाएं छिपी होती है। मैं जानता हूं कि अभी इन बातों को सीखने में उसे समय लगेगा, पर फिर भी आप उसे सिखा सकते हो कि मेहनत से कमाया गया एक रुपया सड़क पर पड़े मिलने वाले 5 रुपए के नोट से कहीं अधिक मूल्यवान है। आप उसे बताएं कि दूसरे से ईर्ष्या की भावना को मन से निकाल दे। साथ ही उसे यह भी सिखाए कि खुलकर हंसते वक्त भी शालीनता बरतना बेहद जरूरी है। अध्यात्म की गुहे गुहे बातें लिखी है उसने उसमें। आप उसे किताबें पढ़ने के लिए कहे, पर साथ ही उसे आसमान में उड़ते पंछियों, फूलों पर मंडराती तितलियों को निहारने और कुदरत को महसूस करने की बात याद दिलाते रहे। मेरा मानना है कि ये बातें उसे उसकी बेहतर जिंदगी के लिए ज्यादा जरूरी है। आप उसे सिखाए कि नकल करके एग्जाम पास करने से अच्छा है फेल हो जाना। और यहाँ पर क्या, नहीं वो दूसरी बात है। यहाँ बाबा कहते कॉपी करो, उधर कॉपी करते हो तो वो बेईमानी है। उसमें अपनी सही बात पर कायम रहने का हुनर होना चाहिए, फिर चाहे दूसरे उसे गलत कहते रहे। दयालु इंसानों के साथ प्यार से पेश आना और बुरे लोगों के साथ सख्ती से पेश आने की बात भी आप उसे बताएं। इन्हीं दिनों में वह दूसरों की तमाम बातों को सुनकर उसमें से अपने काम की चीजों को चुनने की कला विकसित कर सकता है। आप उसे बताएं कि दूसरों को डराना धमकाना कोई अच्छी बात नहीं है, इस काम से उसे दूर रहना चाहिए। उसे यह जरूर बताएं कि मायूसी को किस तरह खुशी में बदला जा सकता है। साथ ही उसे यह भी सिखाएं कि जब कभी उसका रोने का मन करे तो रोने में शर्म बिल्कुल ना करे। मैं सोचता हूँ कि उसे खुद पर भरोसा होना चाहिए और दूसरों पर भी यकीन करना चाहिए, तभी वह एक बेहतर इंसान बन सकता है। उसे कहे, कामयाबी पाने के लिए सारा आकाश तुम्हारा है। इन बातों में से जितना भी आप उसे सिखा पाए उसके भविष्य के लिए बेहतर है। फिर अभी भी वह बहुत छोटा भी है और बहुत प्यारा भी। आपका अब्राहम लिंकन। तो ये जो पत्र है बहुत प्रसिद्ध पत्र है, हर स्कूल में लिखा हुआ रहता है कि मेरा जो बच्चा है अभी बहुत ही छोटा है पर बहुत प्यारा है, पर उसको ये सब बातें आप सिखा देना। कितनी घुई बातें हैं, और बाप हमें पत्र द्वारा ये सारी बातें सिखाता है। एक्चुअली ये पत्र इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसकी जो भाषा है, जो शैली है इंग्लिश की, बहुत ही सुंदर है। ये तो उसका हिंदी अनुवाद था। तो बाबा कहते हैं मैं जो भी बताता हूँ, जो भी तुम प्रश्न पूछते हो उसके जवाब मैं देता हूँ। किसके द्वारा? मुरली के द्वारा। और बेहद का बाप है तो पत्र भी बेहद का लिखेगा, छोटा थोड़े ही लिखेगा। अभी आगे, बाप दादा ने देखा कि चारों ओर के डबल विदेशी बच्चे सेवा में अच्छी लगन में लगे हुए हैं। एक एक को देखते हैं तो हर एक एक दो से आगे है। बाप तो बाप है, अगर नाम लेंगे तो कितने नाम लेंगे, इसलिए सभी अपने नाम से विशेष सेवा की रिटर्न मुबारक स्वीकार करना। नाम लेना शुरू करेंगे तो माला बनानी पड़ेगी, लेकिन माला के सभी मन के बाप दादा के सामने समय प्रति समय बेहद की सेवा और सफलता संपन्न होती जा रही है। वर्तमान समय विशेष विदेश में 2 सेवाओं की रिजल्ट अच्छी प्रत्यक्ष हुई है, 94 की मुरली है। अनेक प्रकार की सेवाएं तो चलती है, लेकिन विशेष एक ये ग्लोबल बुक, ये पता है किसी को क्या है ग्लोबल बुक? नहीं, इसकी कोई एक बुक बनाई थी। बाबा कहते हैं कि जो मेहनत करके है वो तो ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड। अच्छा, जो मेहनत करके तैयार किया है उसके निमित्त चारों और विशेष आत्माओं का संबंध संपर्क में आना सहज हो गया है। शायद ये कोई बुक थी जो बनी और फिर सब जगह दी। तो जिन बच्चों ने दिल व जान प्रोजेक्ट के बाद दिल व जान सिख व प्रेम से समय दिया, सहयोग दिया, उसके प्रत्यक्ष फल सेवा के निमित्त आत्माओं को बाप दादा पदम गुना मुबारक दे रहे। एक तो ग्लोबल बुक और दूसरी बात जो साथ साथ अभी डायलॉग व रिट्रीट किया उसकी रिजल्ट भी पहले से अच्छे रही, और सभी देश वालों ने इसमें जो सहयोग दिया उन सबको भी मुबारक। लक्ष्य अच्छा रखा तो चारों ओर अभी इन दो प्रकार की सेवा की अच्छी धूमधाम चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। बाप दादा को याद है कि पहले विदेश से VIPs तो छोड़ो IPs लाना भी मुश्किल लगता था और अभी तो सहज लगता है। तो यह सेवा का प्रत्यक्ष फल है। और कितनों की दुआएं मिलती है जिसके हाथ में बुक जाता है, उन सबकी दुआएं किसके खाते में जमा होती है? जो निमित्त बनते हैं, चाहे देने की सेवा, चाहे बनाने की सेवा, चाहे आइडिया निकालने की, चाहे लिखने की, सबको दुआएं मिलती है। तो कितनी दुआएं मिल रही है? बहुत दुआएं मिलती है। आप सिर्फ रिसीव करो। किसको? दुआओं को। अपने में ही बिजी रहते हो तो दुआएं रिसीव नहीं करते हो। और जो भी IPs या VIPs संपर्क में आते हैं तो एक कितनों को अनुभव सुनाएंगे तो उन सभी की दुआएं ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत प्राप्त होगी। अगर दुआएं रिसीव करो तो भी संपन्न तो हो ही जाएंगे। केवल दुआएं रिसीव करो। आज से रमजान चालू हो रहे हैं, उसमें भी जो जितनी इबादत करेगा उसको उतनी ही दुआएं मिलेगी। प्रार्थना, भक्ति, याद, जकात जितनी देंगे उतनी दुआएं मिलेगी। जो हम ये हमदर्द बनने का मास है, जो गरीब मुफलिस जो भी है उनको जितना दान करेंगे हमारे जो गुनाह है वो माफ हो जाएंगे। चाहे कोई भी कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, पर इस मास, ये पवित्र मास है, नेकी का मास है, पुरुषोत्तम मास है। इसमें संसार भर के जो भी मुसलमान है, भले सारे वर्ष में मुसलमान ना हो, पर इस मास के लिए तो मुसलमान बन ही जाते हैं, पक्के मुसलमान बन जाते हैं। कोई झगड़ा नहीं, किसी से लड़ाई नहीं, प्यार से रहना और सबसे महत्वपूर्ण सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि सुबह से कितने बजे चालू होता है? 4 बजे से 7 बजे तक उपवास, रोजा। और जो रोजेदार है उनको क्या, इफ्तारी, क्या कहते हैं,
इफ्तारी।
जो इफ्तारी करेंगे उनको, मतलब उनको भोजन खिलाएंगे, उनके तो सारे ही गुनाह माफ हो जाएंगे। इफ्तार पार्टी करते हैं तो इफ्तार अगर हम करेंगे, खाना खिलाएंगे उनको, रोजा तोड़ता है मतलब रात 7 बजे के बाद, तो इफ्तार पार्टी होती है, उसमें तो बहुत दुआएं कमा सकते हैं। तो रोजेदार, जो जो रोजेदार को इफ्तार करेंगे उनको दुआएं मिलेगी। अभी वो अगर रोजे रख रहे हैं और वो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं एक पूरा मास, 30 दिन, हर 30 दिन में 10-10 दिनों का एक एक जो होता है उसको कुछ कहते हैं, वो 10-10 दिनों का भी बहुत महत्व है। अभी वो रोजे रख रहे हो तो हमारा कर्तव्य क्या है? इधर फरिश्ते, उनको देवताओं का साक्षात्कार नहीं चाहिए? उनको हनुमान और गणेश जी अगर आ गए तो वो तो क्या समझेंगे पता नहीं, तलवारी उठा लेंगे वो मूर्ति को तोड़ने के लिए। मूर्ति भंजक है, वो बुत परस्ती के खिलाफ है वो। तो उनको फरिश्तों द्वारा साक्षात्कार कराना ये हमारा कर्तव्य है। पूरा मास आज से चालू हो रहा है, उनकी इबादत का उनको फल कौन देगा? हम। अल्लाह ने किसको भेजा? अल्लाह के पैगंबर कौन है? हम। वो फरिश्ते कौन है? हम। वो मसीहा कौन है उनके लिए? हम। द लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड। इस सृष्टि का अंत जब हो रहा है तो वो अंतिम फरिश्ते, वो अंतिम पैगंबर हम है। तो इस पूरा मास उनको फल देना है। परंतु ऐसा दिखाते हैं कि उनमें भी पूरा एक मास उपवास रखना है तो खाने की चीजें और ही ज्यादा याद आती है। 4 बजे से चालू होता है उनका। इसके लिए जितने पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं सबकी दवाइयों का टाइम हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि दिन में गोली नहीं ले सकते, ना BP की, ना शुगर की, ना कोई भी दवाई, गोली नहीं ले सकते। कितने लोग आए OPD में और कहे टाइम चेंज करो, दोपहर की जो गोली थी वो रात की गोली के साथ कंबाइन कर दी, क्योंकि दिन में कोई भी गोली नहीं ली जा सकती है। पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं। 4 बजे सब गोलियों का टाइम मैंने 3:30 और 4 बजे कर दिया है, और रात की गोलियों का टाइम 8 बजे कर दिया। जो अगर दोपहर में कोई गोली थी, एक सुबह, एक दोपहर, एक रात, तो 2 गोली रात को एक साथ, फिर चाहे कुछ भी होने दो। दोपहर में BP बढ़ गया तो चलेगा, परंतु दिन में नहीं ले सकती कोई गोली। तो रोजेदार जो है उनमें आत्म संयम, सब धर्मों में इस बात को सिखाया गया है। क्यों क्यों खाने से दूर रह रहे हैं? जब भोजन में ही तो बुद्धि लगी रहती है दिन रात भोजन 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 ऐसा समाया हुआ है, बात मत पूछो, रग रग में बस उसी का चिंतन चालू होता है। भोजन के लिए कमाना और बात है, पर उसी के चिंतन में रहना। हमारे एक डीके भाई थे डॉक्टर, जब नीचे शांतिवन में आते थे, रहते थे बाहर पर आते थे। अब उधर की आदत, व्यक्ति मधुवन में जब आता है तो उधर की दिनचर्या साथ लाता है कुछ दिन, तो जब तक इधर की दिनचर्या में सेट ना हो जाए। वो उठता था 8 बजे, 8 बजे उठते ही पहला काम फोन लगाता था किचन में, नाश्ता क्या है। बाद में पहले नाश्ता क्या है। तो भोजन से दूर रहकर उपवास का अर्थ क्या? उपन्यास नहीं, उपवास मतलब पास रहना, उसके पास रहना, उपवास उसके समीप रहना, परमात्मा के समीप रहना, वो है उपवास। उपवास अलग और वो जो अनशन करते हैं वो अलग, वो भी एक रीति से फास्टिंग ही है। भूख हड़ताल, वो हड़ताल, वो सब अलग। तो ये मास है रमजान का, रमजान पवित्र मास है, मौसम बहार कहा जाता है उसे। जितना कमाना चाहो इस मास में कमाया जा सकता है। सारे साउथ, ये जो मिडल ईस्ट कंट्रीज है, वहां तो बस कहीं पर भी हो, बस सब कुछ रोक के नमाज करना होता है, मतलब 5 बार, और कभी एक्स्ट्रा उसको क्या कहते हैं, बाकी इधर नहीं है, सऊदी अरेबिया में उसको क्या कहते हैं, जो एक्स्ट्रा नमाज की जाती है आज के दिन, वो जो 1 घंटा है, तराबी, वो एक एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा योग हमारी भाषा में। रात में 1 घंटा कामकाज सब कुछ करते हैं, पर सब कुछ करते हुए सुबह 4 बजे, वो भी कोई, कई लोग जो सच्चे मुसलमान है वो तो बहुत कम खाते हैं, थोड़ा सा खा लिया और रात में भी कम ही खाएंगे। ऐसा नहीं कि बस सारे दिन भर भूखे रहो तो रात में बहुत, और जितने हैं सब जगह जो है मस्जिद, वहां पर सब तो फ्री मिलता है, कोई भी जाके बैठ जाए, कोई भी जा सकता है, कोई पूछेगा नहीं क्यों आए, कहां से आए, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबके लिए फ्री। और उधर के देशों में तो इतना है कि वहां लेने वाला कोई नहीं, खाना नहीं बाकी भी, जकात इतना है कि इधर से लिया और दूसरे से लो, लेने वाला कोई नहीं, इतना धन संपत्ति है उनके पास, ऐसा भारत में नहीं है। तो दुआएं मिलती है, तो ये हमारे लिए भी रमजान है। हमारे लिए क्या करना है, हमको जैसे वो अगर संयम कर रहे हैं तो हमारे लिए भी ये संयम का मास है, उनके लिए पवित्र मास है, हमारे लिए भी पवित्र मास है। वो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो हमें अपने योग का चार्ट बढ़ाना है और उनको साक्षात्कार कराना, ये हमारा कर्तव्य है। तो हमारे भी सारे गुनाह माफ हो जाएंगे और हमें भी दुआएं मिलेगी। तो बाबा कहते हैं मुस्लिम का अर्थ क्या, सच्चा मुसलमान अर्थात वो, हम एक्चुअली हम ही सबसे सच्चे मुस्लिम तो हम है, जो समर्पण करता है अल्लाह के सामने, कुर्बान होता है। सपूत बच्चे वो है जो बाप के आगे कुर्बान होते हैं, कल की मुरली, तो वो सपूत बच्चे अर्थात मुस्लिम, वो एक्चुअली हम ही है। सच्चे कृष्ण भी हम ही है, सच्चे मुसलमान भी हम ही है, सच्चे सिख भी हम ही है, सच्चे हिंदू भी हम ही है,
सच्चे वैष्णव
भी हम ही है, सच्चा बीज रूप है। तो बाबा कहते हैं अगर दुआएं रिसीव कर रहे हो तो भी संपन्न तो हो ही जाएंगे। बुक भी अच्छा निकाला और ये प्रोग्राम भी अच्छा किया, और भारत वालों ने विशेष क्या सेवा की, कार यात्रा चल रही है, कहां से बिजनेस विंग के भाई बहनों ने 11 कारों की एक रैली राजकोट से बॉम्बे तक निकली है, जिसमें अनेक प्रकार की सेवाएं हो रही है। अभी भी रिजल्ट बहुत अच्छी निकल रही है और आगे एक भी निमित्त बन गए तो अनेकों के भाग्य जगाते रहेंगे। तो ये सेवा की रिजल्ट अच्छी दिखाई दे रही है। जो भी इन सेवाओं के निमित्त उमंग उत्साह से बढ़ रहे उन सभी को, चारों ओर के भारतवासी बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, निमित्त बच्चों को बाप दादा मुबारक दे रहे। मेहनत नाम मात्र और सफलता ज्यादा। अब ऐसी सेवा के प्लान बनाओ। इस सेवा में भी यह दिखाई देता है कि मेहनत कम रिजल्ट जाएगा। देश विदेश के सर्व सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले अथक बन औरों को दान वरदान देने वाली आत्माओं को, चारों ओर के बाप के सर्व संबंध के लव में लीन रहने वाली लवलीन आत्माओं को, सदा सहज अनुभव करने औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहजयोगी आत्माओं को, सदा स्वयं को समान द्वारा सहज देवभान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को, सदा बाप के साथ अनुभव करने वाली और साथ ही अनुभव करने वाली समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सारा याद रखा बाबा ने, जो जो पूरा बोला उसने, जो हम तीन दिन चार दिन से पढ़ रहे हैं, चार लाइन में पूरा कर दिया। हाँ ओके अच्छा।